नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण का शुभारंभ किया। मुख्य भाषण देते हुए फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सेंडर स्टूब ने कहा कि विकासशील और अल्पविकसित देश ये तय करेंगे कि भविष्य में विश्व व्यवस्था कैसी होगी और इसमें भारत की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदल गया है। विकासशील और अल्पविकसित देशों के पास अर्थव्यवस्था और जनसंख्या दोनों ही मजबूत पक्ष हैं। श्री स्तूब ने कहा कि पश्चिमी प्रभुत्व वाले विश्व का युग समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति स्तूब ने कहा कि नई तकनीक से विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई नहीं बढ़नी चाहिए। भारत और फिनलैंड के बीच आज नई दिल्ली में पर्यावरण, सहयोग, प्रवासन और आवाजाही तथा सांख्यिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सेंडर स्टूब के साथ कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है।
आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर अपनी साझा चिंताओं और संवाद तथा कूटनीति से समाधान की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए घनिष्ठ सहयोग और समन्वय जारी रखेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से बातचीत की। उन्होंने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद बिन हमूद अल बुसैदी से भी चर्चा की। इस बीच कई देशों के शामिल होने के साथ पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष तेजी से बढ़ गया है। अमरीका और इसराइल ईरान पर हवाई हमले कर रहे हैं और तेहरान मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान समर्थित हिजबुल्ला भी ईरान के साथ हमलों में शामिल हो गया है। क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए इसे खतरा बताते हुए कई देश चिंता व्यक्त करने के साथ स्थिति को शांत करने का आह्वान कर रहे हैं। अजरबैजान ने आज नखचिवान शहर और हवाई अड्डे पर ईरान के ड्रोन हमले की कड़ी आलोचना की है। इसमें दो नागरिक घायल हो गए। ईरान ने इन हमलों से इनकार किया है। कतर ने भी ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। श्री नीतीश कुमार ने आज सुबह राज्यसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। इस बीच भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के राज्य महासचिव शिवेश कुमार ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं जनता दल यूनाइटेड के रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी नामांकन पत्र जमा किया। उधर राज्यसभा चुनाव के लिए आज हरियाणा से संजय भाटिया ने भारतीय जनता पार्टी से, कर्मवीर सिंह बौद्ध ने कांग्रेस से और सतीश नांदल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि थी। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल 3 दिन की नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल नागालैंड के लुमामी में नागालैंड विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर जाएंगी। राष्ट्रपति कल वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दार्जिलिंग पर्वतीय उत्सव का शुभारंभ करेंगी। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में 3 विकेट पर 160 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।